नारायण 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 नारायण। समुपस्थित समस्त भक्तवृंद, श्रद्धामयी मातृशक्ति, ये परमार्थ निरूपण एकादश स्कंद जो श्रीमद् भागवत के अंतर्गत है, इसे हम लोग अपने आत्म कल्याण के लिए सत्संग के माध्यम से चिंतन कर रहे हैं। भगवान साधकों के लिए ये उपदेश कर रहे हैं और उन साधकों के लिए जिन्हें इसी जीवन में, जिसके लिए ये जीवन मिला है, उसे प्राप्त करना है। प्राप्त करना माने उसे समझना है, जानना है, यही प्राप्त करना है। क्या करना है? कहा इस संसार से अपनी दृष्टि को या तो पूर्णतया हटा लो, नहीं हटा सकते हो तो दृष्टि को बदल लो। दृष्टि को बदलो, हटा नहीं सकते हो तो बदलो। बोले हम बिना देखे नहीं रह सकते, कहा बहुत अच्छा। बिना सुने नहीं रह सकते, ये भी ठीक है। माने आप व्यवहार को बंद नहीं करना चाहते हो तो भगवान कहते हैं आप व्यवहार कीजिए, लेकिन जरा दृष्टि को बदल करके करो। आत्मा के सिवा और कुछ है नहीं, एक दृष्टि बनाओ। यद्यपि सामान्यतया ये बात कहने में जितनी सरल है उतनी बनाने में थोड़ा कठिन लगती है, किंतु जब चिंतन करने वाला चिंतक साधक इस बात पर उतारू हो जाए कि मुझे अपने सिवा और किसी का दर्शन ही नहीं करना है, तो ये सबसे सरल काम है, सीधा काम है। भगवान कहते हैं मैंने आपके सामने, उद्धव से कह रहे हैं, ज्ञान और विज्ञान इन दोनों का निरूपण कर दिया। और देखो ये जो उपदेश है इसे मैं तुम्हें दे रहा हूं, किंतु इस उपदेश को यदि कोई दूसरा भी अपने जीवन में लेकर के आएगा तो वो अपने लक्ष्य तक पहुंच जाएगा। भगवान ने महाभारत के बीचों बीच में अर्जुन को उपदेश दिया, वो अर्जुन के लिए नहीं। और जो भगवान ने प्रभास क्षेत्र कहो या द्वारका कहो, इसको लेकर के थोड़ा सा विवाद है। हाँ, मतलब विचार करते हैं, कोई तो कहते हैं भगवान ने उपदेश उद्धव को द्वारका में ही दिया, और कोई कहते नहीं नहीं प्रभास क्षेत्र में दिया। कहीं दिया हो भगवान ने उद्धव को उपदेश दिया, किंतु ये केवल उद्धव के लिए नहीं है। जैसे भगवान ने अर्जुन को जो उपदेश दिया वो मात्र अर्जुन के लिए नहीं है, इसी प्रकार से ये उपदेश भी उद्धव के लिए नहीं है। भगवान कहते हैं वो विद्वान है, वो समझदार है। कौन? जो हमारे इस बताए मार्ग पर चल पड़ता है। ये नहीं बोले इनके पास तो बड़े प्रमाण पत्र हैं विद्वता के, ये तो काशी से लेकर के विद्वता आए हैं, इनके पास प्रमाण है, आचार्य हैं, वेदांताचार्य हैं, व्याकरणाचार्य हैं, अनेक डिग्रियां हैं इनके पास में, सब इनको मानते हैं। भगवान कहते नहीं, मेरी दृष्टि में वही विद्वान है, हाँ, जो मैंने कहा है उसे अपने जीवन में जो उतार लेता है। हाँ, एतद एतद विद्वान मदुदितम ज्ञान विज्ञान नैपुणम, मेरे द्वारा उदितम माने जो कहा गया है उस ज्ञान और विज्ञान को मेरे जीवन में उतार लेता है, अपने जीवन में जो उतार लेता है, कहा कैसे उतार ले, बस एक ही बात, किसी की निंदा नहीं करे और किसी की प्रशंसा नहीं करे। देखो आत्मानुभव की बात छोड़ दो, ये संकल्प तो आप और हम सब मिलकर के कर ही सकते हैं कि आज से और कुछ नहीं, तो केवल भगवान की इतनी बात तो मान लें, न किसी की निंदा करें और न किसी की प्रशंसा करें। इस निंदा और स्तुति से यदि व्यक्ति बच जाता है तो वो साधना के मार्ग पर बहुत जल्दी चल पड़ेगा। हमारा व्यर्थ समय जाता है निंदा करने में, निंदा सुनने में, स्तुति करने में, स्तुति सुनने में, इसी में बहुत सा समय चला जाता है। अब कोई कहे कि चलो महाराज मान लेते हैं कि हम तो नहीं करें लेकिन कोई हमारी करने लग जाए तब हमको क्या करना है। भगवान कहते हैं इस ज्ञान और विज्ञान को तुमने जो मैंने कहा है यदि ठीक तरह से समझ लिया है तो तुम्हारा व्यवहार उसी तरह से होगा जिस तरह से सूर्य का व्यवहार होता है। सूर्य का व्यवहार, आपकी निंदा आपकी स्तुति कोई कर नहीं सकता, क्योंकि जब आप अपने को शरीर से संबंध करके देखते हो, मैं अमुक नाम वाला, अमुक जाति वाला, अमुक का संबंधी, अमुक हमारा गोत्र है, अमुक मेरा आश्रम है, ये सबके सब आपको कहां बैठा देते हैं, अरे ये सबके सब इस हड्डी मांस के पुतले में ही आपको बैठा देते हैं। माने हम अपने को इस पांच भौतिक पंचभूतों से बना हुआ जो ये शरीर, इसमें अपनी अहंता को बैठा लेते हैं और तब प्रशंसा अच्छी लगती है। हाँ, अपनी निंदा से हमको दुख होता है, लेकिन जब आपने अपने को आत्मा समझ लिया है, आत्मा समझने का मतलब आपके सिवा, एक बात बिल्कुल शत प्रतिशत इसको आप गांठ बांध लीजिए, आत्मा समझने का अर्थ है कि आपके सिवा और कोई सत्ता ही नहीं है, आपके सिवा कोई सत्ता नहीं है, कहीं सत्ता नहीं है, कुछ सत है ही नहीं। हाँ, और आप ही आप हैं, परिपूर्ण हैं आप, जब कोई दूसरा है ही नहीं। हाँ, तो कौन तुम्हारी निंदा करने वाला होगा और कौन तुम्हारी स्तुति करने वाला होगा। यदि प्रतीक हो रहा है तो वो तुम्हारी यथार्थ प्रमा नहीं है, अयथार्थ प्रमा है, वो अयथार्थ मिथ्या ज्ञान है, मिथ्या प्रतीति हो सकती है, बिना हुए भी अन्य की प्रतीति हो सकती है। हाँ, जहां कुछ नहीं होता है लेकिन फिर भी होता है, होता नहीं है फिर भी होता है। दृष्टांत, जैसे आप सो जाते हैं, सो गए, सपना देखा, तो बताओ होता है, वहां कोई होता है? हाँ, इसीलिए श्रुति भगवती कहती है यत्र द्वैतमेव भवति। हाँ, वहां दूसरा कोई होता नहीं है लेकिन दूसरा जैसा दिखाई पड़ता है, किंतु वो तो स्वप्न में, किंतु वही जागृत में फिर दूसरा जैसा दिखाई नहीं पड़ता है उसके मिथ्यात्व का निश्चय आपको हो जाया करता है। इसी प्रकार से आत्मसत्ता के सिवा यदि कुछ प्रतीत हो रहा है तो वो मिथ्या प्रतीत हो रहा है। भगवान कहते हैं इसलिए जो मिथ्या है, मिथ्या माने मात्र प्रतीति है, उसकी अपनी सत्ता नहीं है, तब किसकी तुम निंदा में लगे हो, किसकी स्तुति में लगे हो, जरा इससे ऊपर उठ जाओ। हाँ, व्यवहार करो, भगवान व्यवहार का निषेध नहीं करते हैं। तब कहते लोके चरति सूर्यवत्, हाँ, सूर्य की तरह से। हाँ, वो विद्वान व्यवहार करता है जैसे सूर्य भगवान व्यवहार करते हैं, ऐसे आप व्यवहार करो। देखो, विद्वान के व्यवहार का यहां पर भगवान संकेत दे रहे हैं। सूर्य भगवान व्यवहार करते हैं, ऐसे ही विद्वान भी व्यवहार कर सकता है। सूर्य भगवान का व्यवहार किससे होता है भाई, किससे होता है और किससे नहीं होता है? सबसे होता है ना, लेकिन किसी से होता नहीं है। व्यवहार तो हो रहा है लेकिन किसी से होता नहीं है। वो सहज, हाँ, जो जहां जैसा है, सूर्य भगवान अपने प्रकाश से उसको प्रकाशित करते हैं। इसीलिए भगवान कृष्ण भगवत गीता में इस बात को स्पष्ट करते हैं, प्रकृतेर गुण सम्बूढ़ा सज्जन्ते गुण कर्मसु, तान कृष्ण विदो मंदान कृष्ण विन न विचालयेत। ये बड़ा क्रांतिकारी भगवान का उपदेश है। ये संसार के ना समझ लोग जो कुछ कर रहे हैं उन्हें पूर्ण तत्व का ज्ञान नहीं है। वो जहां लगे हैं उनको वहां लगे रहने दो, तुम उनके ठेकेदार मत बन जाओ कि ये इधर क्यों जा रहे हैं। अरे तुमने तो तत्व को समझ लिया है। देखो, भगवान ने एक नया शब्द यहां दिया है, कृष्णविद। कृष्ण कहते हैं पूर्ण को, जो पूर्ण वेदता है, समग्रता का जिसे ज्ञान हो गया है। पूर्ण कौन है? कृष्ण माने संपूर्ण का जिसे ज्ञान हो गया है। हाँ, और वहां भाष्यकार भगवान कहते हैं कृष्णविद आत्मविद। भाष्यकार भगवान कहते हैं कृष्णविद माने आत्मविद, आत्मा का ज्ञान ये संपूर्ण ज्ञान है। हाँ, आत्मा से इतर जो ज्ञान है वो संपूर्ण नहीं है, वो अपूर्ण ज्ञान है। ये संसार के अपूर्ण ज्ञानवान बने हुए हैं तो अज्ञानी, लेकिन अपने को ज्ञानवान मान करके व्यवहार कर रहे हैं, समझदार मान रहे हैं। भगवान कहते हैं उन समझदारों को छेड़ो मत, हाँ, न विचाले, हाँ, बल्कि हाँ कहीं कहीं जरूरत पड़े तो उनके साथ मिलजुल जाओ। हाँ, उनके जैसा व्यवहार करने लगो, लेकिन हमेशा नहीं। हाँ, पंचदशी कार ने इसका विभाग बहुत अच्छा किया। वो कहते हैं कि तत्ववेत्ता जब ना समझों के बीच में रहे तो बिल्कुल उपदेश नहीं करे, क्योंकि वो समझेंगे ही नहीं। तुम उपदेश करने लग जाओगे तो समझेंगे नहीं बल्कि तुम्हारा और उपहास करने लगेंगे। तत्ववेत्ताओं के बीच में उपदेश करने की जरूरत नहीं है, वहां पर मौन होकर के रहे। लेकिन जब मुमुक्षुओं के बीच में वो चला जाए तो उस समय मौन होकर के नहीं रहे, उस समय तो संसार की असारता का दावे के साथ खंडन करते हुए उनके क्रियाकलापों का खंडन करे, इस कोई ठीक नहीं है, ये सब उचित नहीं है। अरे संसार मिथ्या है, वहां पर इस संसार के असारता का निरूपण करे उस आत्म तत्व के जिज्ञासुओं को। हाँ, लेकिन भगवान यहां पर कहते हैं वो आत्म तत्व के जिज्ञासु हो तब ना, आत्म तत्व के जिज्ञासु तो है ही नहीं, वो तो संसार के व्यवहार में लगे हुए हैं, इसलिए वो उनका मार्गदर्शन नहीं करे। सूर्य भगवान किसी का मार्गदर्शन नहीं करते, किसी के व्यवहार में हस्तक्षेप नहीं करते, बल्कि उनके व्यवहार को और प्रगति प्रदान कर दे, मेरे प्रकाश में तुम व्यवहार करो। हाँ। तो कहा प्रकाश में व्यवहार करेंगे तो उस पर कुछ न कुछ, कोई न कोई थोड़ा बहुत दोष सूर्य भगवान पर भी जाएगा। कहा नहीं, केवल प्रकाश मात्र करना सूर्य का कार्य है। इसी प्रकार से तत्ववेत्ता भी इस समग्र संसार में अपने ज्ञान के द्वारा सबको प्रकाशित करे, उपदेश करे, लेकिन कहीं आसक्त न हो। यदि आसक्त होता है तो वो तत्ववेत्ता है ही नहीं, और आसक्ति जब आती है तो कल जैसा मैंने आपसे निवेदन किया था, आसक्ति आने का मात्र एक ही कारण है, कहीं आसक्ति कभी आ ही नहीं सकती है। कारण एक ही है, जब आप इस दिखाई देने वाले दृष्टि को सच्चा समझ बैठते हो। दृश्य हो और आपकी बुद्धि में ये बैठ चुका हो ये तो मिथ्या है, तो बताओ आपके हृदय में उसके प्रति आसक्ति कौन उत्पन्न करेगा। इस दृश्य को जब सच्चा समझ लिया जाता है तो फिर कोई भी आसक्ति करा नहीं सकता है। बोले महाराज लगता तो है कि ये सच्चा है, तो भगवान कहते हैं किसी भी दृष्टि से सच्चा नहीं है। हाँ। किसी दृष्टि से नहीं, तुम समझदार हो, प्रत्यक्ष देख लो इसमें सच्चाई कहां है, किसमें, जो दिखाई पड़ रहा है उसमें। हाँ। दृश्यमान है उसमें सच्चाई है ही नहीं, प्रत्यक्ष देख लीजिए क्या सच है। हाँ। आप जो व्यवहार कर रहे हैं उसमें कितनी सत्यता है, आप अपने समग्र जीवन को आप टटोल करके देखो, क्या उसमें सच मिला अभी तक आपको। हाँ, व्यवहार काल में थोड़ी देर के लिए लगता है ये सच जरूर है। जैसे बचपन में आपको अपना बचपन तो सच लगता, जवानी में जवानी सच लगती, और बुढ़ापे में बुढ़ापा सच लगता, लेकिन सोचो यदि वो सत्य है तो उसमें परिवर्तन क्यों हुआ। और सत्य की यही परिभाषा की गई है, तीनों काल में जो आवादित होता है त्रिकाला बाधित्वम नित्यत्वम सत्यत्वम, जिसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, कभी परिवर्तन नहीं होता है, वो सत्य है, और जिसमें परिवर्तन होता है वो असत्य है। अब देखना यह है कि यह दृश्यमान जगत है, इसमें परिवर्तन कब होता है। किसी काल का आप निश्चय करो, परिवर्तन किसी काल में होगा ना, किस काल में परिवर्तन हो रहा है, तो कहना पड़ेगा आप बुद्धिमान हो। अरे आजकल तो आप सबके पास कंप्यूटर हैं, लैपटॉप हैं, गणित लगाओ, हिसाब लगाओ कि आपके बचपन का परिवर्तन किस क्षण में हुआ, किस क्षण में हुआ, जवानी का परिवर्तन किस क्षण में हुआ। अरे ये परिवर्तित हो रहा है, किंतु हमें इसका परिवर्तन दिखाई नहीं पड़ता। और जो जिसमें परिवर्तन नहीं होता है, वो हमें दिखाई नहीं पड़ रहा है। ये परिवर्तित संसार, इसको भी हम नहीं देख पा रहे। भगवान कहते हैं प्रत्यक्ष है ना, प्रत्यक्ष है इसमें परिवर्तन। और जैसे संसार में परिवर्तन प्रत्यक्ष है, ऐसे ही आप में अपरिवर्तन प्रत्यक्ष है। क्या संसार में जैसे परिवर्तन प्रत्यक्ष है, ऐसे ही आप में अपरिवर्तन प्रत्यक्ष है, लेकिन दोनों को नहीं देख पा रहे। हमारे में कोई परिवर्तन हुआ नहीं, कभी नहीं हुआ, आज तक नहीं हुआ, आगे की उम्मीद छोड़ दो। आप अपरिवर्तनशील हैं, और ये हमारा आपका सबका अनुभव है, ये प्रत्यक्ष अनुभव है। यहां वृद्धजन पुरुष भी हैं, माताएं भी हैं, ये फुरना स्फुरण होता है कि नहीं, मैं वही हूं, मैं वही हूं, ऐसा स्फुरण आपको जो बूढ़े हैं वृद्ध हैं होता है कि नहीं। कभी बचपन की याद आती है, माता पिता के गोद में, दादा दादी के गोद में, नाना नानी के गोद में खेलने का स्मरण होता है, मैं वही हूं। अपने मित्रों से मिलते हो 50 वर्ष बाद, कोई 50 वर्ष बाद मिला, जो आप दोनों किसी कॉलेज में पढ़ते थे, स्कूल में पढ़ते थे, और उस समय आपको स्फुरण क्या होता है, परिचय किस रूप में, अरे भाई पहचाना नहीं, हाँ मैं वही हूं। क्यों भाई, तुम वही हो, सब कुछ तो तुम्हारा बदल गया, लेकिन तुम वही कैसे हो ये बताओ। देखो, एक वह है जिसमें परिवर्तन हो रहा है, और एक वह है जिसमें परिवर्तन नहीं हो रहा। आप वही है ना। अच्छा, यहां जितने विराजमान हैं, सबका एक जैसा अनुभव, मां के उदर में ये पांच भौतिक ढांचा गया था, था किसी दिन, आप वही हैं जो मां के उदर में थे, वही हैं आप। उस समय की आकृति और आज की आकृति में क्या कोई समता है? कोई लेना देना नहीं, कोई हिसाब किताब नहीं, लेकिन आपका हिसाब किताब बराबर है, जैसे का तैसा है, मैं वही हूं। अरे यही तो है, यही तो अनुभूति का विषय बनता है। जब आचार्य कृपा करते हैं, महापुरुष कृपा करते हैं, तो वो यही तो कहते हैं, तुम वही हो, ये चिंतन करो, तुम वही हो। और ये हमारी अनुभूति का विषय होता है कि मैं वही हूं, लेकिन मात्र ये हमारी अनुभूति एक दायरे में सीमित करके रह जाती है, परिच्छिन्नता में बंध करके रह जाती है। अगर मैं वही हूं इसी को अपरिच्छिन्न बना दिया जाए, प्रत्यक्ष है मैं वही हूं, और अनुमान से, अनुमान से भी ये बिल्कुल स्पष्ट होता है, प्रत्यक्षेणानुमानेन, अनुमान होता है इस दृश्यमान जगत को देख करके, ये अनुमान होता है कि संसार में आए हैं, है ना? ये तो सबको ही लगता है कि संसार में आए हैं। अच्छा, आप संसार में आए हैं तो पहले आप कहीं थे कि नहीं थे? हाँ, आप थे पहले, तभी ना आपका जो यहां पर आना हुआ है तो कहीं पहले थे तब। अच्छा, यहां कैसे आप आए? किसी क्रिया से आए कि बिना क्रिया के आए? मान लीजिए इस सत्संग भवन में ही आए, तो आपने क्रिया की या सीधे सीधे? आप क्रिया द्वारा, कर्म द्वारा आप यहां तक आए हो, माने आज इस सत्संग भवन में आप बैठे हो, आप अपने कर्म के द्वारा यहां बैठे हो। इस प्रत्यक्ष है, इस संसार में आप आए हैं, आपको आपका कर्म लेकर के आया है। तो आपका जो अपना कर्म लेकर के आया है, वह कर्म आपने पहले किया था ना, तो बताओ उस समय का स्मरण आपको है क्या? उस समय का स्मरण नहीं है, लेकिन जैसे आप अपने घर से यहां तक चल करके आए हो इस क्रिया के द्वारा, ऐसे ही जो इस संसार की प्राप्ति है वह कर्म के द्वारा है। और यही मीमांसकों का सिद्धांत है, आप अपने कर्म के बल पर इस लोक को प्राप्त करते हैं और यहां तक कि स्वर्गलोक तक को प्राप्त करते हो। तो माने हमने पहले कर्म किया था, तो हम पहले थे कि हमारा कर्म पहले था? हम पहले थे, हमने कर्म किया, उससे पहले कर्म किया, उससे पहले कर्म किया, उससे पहले, माने ये धारा, कर्म की धारा, कर्म की धारा चलती रही, हम कर्म करते रहे, उन कर्मों का फल हमको प्राप्त होता रहा, और कर्म फल हमको देख करके शांत होते रहे, फल भी शांत होते रहे, और ये धारा चलती रही, लेकिन हमारे अंदर कोई बदलाव नहीं हुआ, हम वही। कर्मों ने हमारा साथ छोड़ा, कर्म फल ने हमारा साथ छोड़ा, सब कुछ छूटता चला गया, लेकिन हम वही, माने एक नित्य है और एक अनित्य है। सहज रीति से ये आपके हमारी समझ में आ जाएगा। भगवान कहते हैं प्रत्यक्षेणानुमानेन, प्रत्यक्ष से देख लो, अनुमान से देख लो, क्या ये जो संसार है आदि वाला है, अंत वाला है? जो आदि और अंत वाला है इसको असत कहते हैं, भगवान कहते हैं आद्यंतवत असत ज्ञात्वा। इसको आदि वाला समझो, अंत वाला समझो। जो कर्म से प्राप्त होने वाला है वो आदि वाला होगा, अंत वाला होगा। भगवान कहते हैं केवल प्रत्यक्ष अनुमान नहीं, इसमें शास्त्र परम प्रमाण है। निगवेन, हाँ, वेद, वेद भगवान इस बात को कहते हैं। हाँ, और आत्म संविदा, आपकी अनुभूति, इसमें परम प्रमाण है, आपकी अनुभूति है। कर्म हम करते हैं और कर्म का फल प्राप्त होकर के शांत होता है। ऐसे ही जो प्राप्त हुआ है वो एक बार छूट जाएगा, क्योंकि वो सत नहीं है, असत है। आद्यंतवत असत ज्ञात्वा निसंगो विचरे दिह, असंग होकर के इस पृथ्वी पर हमको प्रारब्धानुसार इतना जोड़ लेते हैं। हाँ, जब तक प्रारब्ध है तब तक इस पृथ्वी पर रहना है। यद्यपि ठोस जब बात की जाती है तो इसको भी एक बार दरकिनार कर देते हैं कि भाई ठीक है, लेकिन इस सिद्धांत तक सबकी पहुंच नहीं हो पाती है कि जो प्रारब्ध को भी बगल में रख दिया जाए। क्या प्रारब्ध है, लेकिन फिर भी कहा नहीं नहीं थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं। हाँ, थोड़ी देर के लिए, पूर्ण रीति से नहीं। हाँ, किसी भी दृष्टि से प्रारब्ध स्वीकार नहीं हो सकता, किंतु मान लेते हैं। किस लिए? कि जो नहीं समझ रहे हैं उनको समझाने के लिए। अज्ञान जन बोधार्थम प्रारब्धम भक्ति वै श्रुति ही। ये भाष्यकार भगवान स्पष्ट करते हैं अपरोक्षानुभूति में। हाँ, अज्ञानियों को प्रबोध कराने के लिए, बोधार्थम उनको ज्ञान कराने के लिए जो श्रुति कहती है कि प्रारब्ध है, तो वो किसकी दृष्टि में है? हाँ, तत्ववेत्ता की दृष्टि में है या अज्ञानियों की दृष्टि में है? अरे, तत्ववेत्ता की दृष्टि में सत्य तो कुछ होता ही नहीं है। यही तो वेदांत का सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र है। आप किसी को भी मान लो, हम नहीं आपको रोकेंगे। कोटि कोटि कल्पनाएं करो, कुछ भी आप स्वीकार करो, लेकिन इस प्रश्न का उत्तर तो आपको देना पड़ेगा, क्या ये सत्य है? सत है क्या? और हमारे यहां पर आत्मा के सिवा, ब्रह्म के सिवा, हाँ, कुछ भी कह लो जो आपको पसंद हो, हाँ, सत्य कुछ नहीं है। और जो सत्य नहीं है वो बना रहे तो उससे हमारा संबंध क्या है? हमारा संबंध क्या है? प्रारब्ध है, हैं? तो बताओ वो सत्य है कि असत है? ये प्रश्न होगा। इसलिए मात्र समझाने के लिए जो श्रुति ने, श्रुति का कोई प्रमाण दे, तो भाष्यकार भगवत्पाद शंकराचार्य भगवान कहते हैं, हाँ, उन अज्ञानियों को समझाने के लिए प्रारब्धम भक्ति वै श्रुति। जो सुना गया है प्रारब्ध, वह तो अज्ञानियों को बोध कराने के लिए। आत्मा का प्रारब्ध कभी हो नहीं सकता। और आत्मा के सिवा अगर कुछ है, आप कहेंगे शरीर है, हैं? तो शरीर है तो वो सच्चा है कि झूठा है? हाँ, और जब असत है तो उसका प्रारंभ, असत का प्रारब्ध क्या होगा? इसलिए आद्यंतवद असत ज्ञात्वा, इसको आप समझ लीजिए, अच्छी तरह से समझ लीजिए, और जिस दिन समझ में आ जाएगा कि ये असत है, असत है, फिर आपको असंग वन्नी के लिए कहीं साधना नहीं करनी पड़ेगी, कोई माला नहीं घुमानी पड़ेगी, आप भगवान के भक्त हैं, भगवान का भजन करो, लेकिन असंग होने के लिए आपको कुछ करना नहीं पड़ेगा। मेरा किसी से संबंध नहीं रहे, भगवान ऐसी कृपा कर दें क्या, हाँ, कि सबसे हमारी ममता छूट जाए, किसी से मोह नहीं रहे, आसक्ति नहीं रहे। अरे ये छोटे मोटे काम भी भगवान से कराओगे, ये तो हल्का सा कार्य है, इसे तो आप स्वयं कर सकते हो ना। भगवान के ऊपर तो उस कार्य को छोड़ो जो आप नहीं कर सकते हो। ये संसार असत है, संसार के संबंध, ये संसार का व्यवहार, ये असत है, सत नहीं है। इसको स्वीकार करने में बताओ कुछ खर्च हो रहा है क्या, है? कोई हानि हो जाएगी? यदि संसार को आप असत, संबंधों को असत स्वीकार करेंगे, आप कहें कि हम स्वीकार करें तो आगे कुछ बात बिगड़ेगी तो नहीं? अच्छा, इसको तुम सत स्वीकार करते रहो तो बात बनी रहेगी क्या? हा? कौन सा ऐसा संबंध है जिससे आपका विच्छेद नहीं होगा? कौन सी ऐसी वस्तु है जिसको आप छोड़ेंगे नहीं, छूटेगी नहीं? अरे ये तो सब कुछ छूटने वाला है। हाँ, इसको सत्य मान करके रोना पड़ेगा, बस बात इतनी है। यदि आपने इसे सत्य समझ करके इसके साथ व्यवहार किया तो आंसू बहाना पड़ेंगे, निश्चित रोना पड़ेगा। और ये समझ में आ गया, आदि वाला है, अंत वाला है, माने इसका जन्म होता है, षड्भाव विकार इसी के अंतर्गत आने वाले हैं। आद्यंतवत, आदि वाला माने जन्म वाला, नाश वाला, और इसके बीच में आने वाले सब विकार, वो सब समस्त विकारों से ये भरा हुआ है। कौन? ये दृश्यमान जगत। इसलिए निंदा और स्तुति से परे चले जाओ, क्योंकि जो विकारी है उसमें तुम अच्छाई देख रहे हो, ये तुम्हारी बुद्धिमानी नहीं है। अरे जो स्वयं में विकारी है और विनाशी है उसकी तुम बुराई करने में लगे हो, ये तुम्हारी बुद्धिमानी नहीं है। इसलिए भगवान कहते हैं जो मेरे द्वारा कहा गया है इसको अच्छी तरह से समझ लेता है, इसे समझ लो। और भगवान ने यहां पर दोनों इन नौ श्लोकों में, ये नौवा श्लोक है, इन नौ श्लोकों में ऐसा लगता है अपना हृदय ही उलेल करके रख दिया, सब कुछ कह दिया। आत्मैव तदिदं विश्वम सज्जते सज्जति प्रभु, आत्मा ही सब कुछ है, यहां आत्मा के सिवा और कुछ नहीं है। यदि आत्मा के सिवा कुछ दिखाई पड़ता है, असत है, मायामय है, त्रिगुणात्मक है। भगवान ने इसमें सब कुछ कह दिया है, इसलिए साधकों को उस व्यवहार में, व्यवहारिक जगत में, जिसके द्वारा राग द्वेष की अभिवृद्धि होती है, इसके द्वारा राग द्वेष की अभिवृद्धि होती है, गुण बुद्धि करने पर और दोष बुद्धि करने पर, राग द्वेष की अभिवृद्धि होती चली जाती है। और भगवान कहते हैं भगवद गीता में, तयोर न वस मां गच्छे तौ यस्य परिपंथिनौ। ये लुटेरे हैं, इन दोनों के बस में मत आओ, राग और द्वेष के बस में आप मत हो। और हम बसीभूत कब होते हैं? जब किसी वस्तु को अच्छा और किसी को बुरा समझ लेते हैं। अच्छा समझते हैं तो उसके लिए यत्नवान होते हैं, उसमें हमारी आसक्ति होती है, हम असंग नहीं हो पाते हैं। और निंदा स्तुति को छोड़े बिना असंगता का आपको अनुभव नहीं हो सकता। असंगता का अनुभव का अर्थ है सीधा सीधा अपने आत्म स्वरूप का आपको अनुभव नहीं हो सकता। क्यों? यदि असंग है, ये तो आप सबका हजारों बार का सुना हुआ वाक्य होगा, हाँ, असंगो नहीं सज्जते, वो असंग है, असंगो ही अयम पुरुष। हाँ, ये तो श्रुति का वचन है, वृदारण्यक श्रुति है। यह जो पुरुष है, कौन पुरुष? अरे कहा, जो इस शरीर के अंतर्गत जिसकी सत्ता उपलब्ध होती है, किस रूप में? अपने अहम के रूप में। हाँ, अपने अहम 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 ऐसे उत्स्फूर्ण के रूप में जिस सत्ता का अनुभव होता है। हाँ, और जब सत्ता का अनुभव होता है तो चित्ता का अनुभव होता है। सत्ता चित्ता का जो अनुभव है, यही आनंद का अनुभव होना, हम हैं। हाँ, बताओ, ऐसा अनुभव करके आज तक कोई दुखी हुआ? हम हैं, ऐसी सत्ता ऐसी चित्ता का अनुभव जब होता है, हम हैं, हम हैं, हाँ, तो आपको सहज आनंद की प्राप्ति होती है। माने सत्ता चित्ता और प्रियता, यह जो आपके अहम में ओतप्रोत है, हाँ, जिसका दूसरा नाम ब्रह्म है, सच्चिदानंद है, नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप है, वो असंग है, और इस शरीर में रहकर के असंग है, व्यवहार करते हुए असंग है, सारा व्यवहार हो रहा है, लेकिन व्यवहार किसके द्वारा हो रहा है? जैसे एक ही दृष्टांत, जैसे स्वप्न का समग्र व्यवहार किसकी सत्ता से है? हाँ, आपकी सत्ता ओतप्रोत है और आप उससे पृथक हो। ठीक इसी प्रकार से स्वप्नवत इस संसार में आपके सिवा और कोई दूसरी सत्ता नहीं है, सर्वत्र आपकी सत्ता, सर्वत्र आपकी सत्ता ओतप्रोत है। कहीं पर भी आपकी सत्ता के अभाव का दर्शन नहीं हो सकता, और जहां आपकी सत्ता के अभाव का दर्शन होगा वहां व्यवहार नहीं हो सकता है। ये ध्यान रखना, स्वप्न जगत में जितना भी व्यवहार होता है, दृष्टांत से दाष्टांत को सरलता से समझ लिया जाता है। स्वप्न जगत में ऐसी कोई सृष्टि देखो जहां पर फुरणा नहीं हो, चैतन्यता नहीं हो, ज्ञान नहीं हो, हो नहीं, और वो सृष्टि हो, वो सत्ता चित्ता और प्रीता प्रत्येक पदार्थ में अनुस्यूत होती है। स्वप्न के प्रत्येक पदार्थ में जड़ हो या चैतन्य हो सब तो दिखाई पड़ते हैं। मकान भी दिखाई पड़ता है, देवियां भी दिखाई पड़ती हैं, पुरुष भी दिखाई पड़ते हैं, पशु पक्षी भी दिखाई पड़ते हैं, वृक्ष भी दिखाई पड़ते हैं, लेकिन सब में ओतप्रोत है वो चित सत्ता। अधिष्ठान रूप में तो वही होता है ना, इसलिए भगवान ने कहा तस्मान न ह्यात्मनो न्यस्मान ही, कहते निश्चित रीति से आत्मा के सिवा और कुछ नहीं है। यहां पर भी इस व्यवहारिक जगत में भी आत्मा के सिवा और कुछ नहीं है, जो कुछ भी है सब आत्मा है। आत्मसत्ता सर्वत्र विद्यमान है, लेकिन उस आत्मसत्ता का दर्शन क्यों नहीं हो पाता है? इसलिए नहीं हो पाता है कि हमने अपनी उस असंग आत्मस्वरूप को नहीं जाना है। मैं असंग हूं, हां असंगो हम, असंगो हम, असंगो हम, हां इस असंगता का आप अनुभव कीजिए। आज तक आप बंधे नहीं हो, आज तक नहीं बंधे हो तो आगे भी बंधने वाले नहीं हो। रोज का आपका प्रत्यक्ष अनुभव है, इस शरीर से आप बंधे नहीं हो। बंधे हो क्या? अगर इसी से बंधे हो तो सपने में आप इसको छोड़ देते हो कि नहीं? उस शरीर में आप जाकर के विराजमान होते हैं, वहां व्यवहार होता है, इससे कोई मतलब नहीं होता है। पूर्व शरीरों का स्मरण आपको अगर हो जाए तो उनसे बताओ कितना प्रेम करोगे। अच्छा देखो, आपकी बाल्यावस्था गई उसके लिए आप शोकाकुल हुए, कभी किसी ने दुख मनाया? क्यों भाई? अच्छा जवानी चली गई जिसे बहुत आप स्नेह करते थे उसके लिए आप दुखी हुए? हाँ हो सकता है आप लोग समझदार हैं तो कभी मातम मनाया हो कि चलो एक दिन तो बैठ करके, ज्यादा नहीं तो एक दिन तो तय करते हैं। आप अपनी असंगता का दर्शन प्रत्यक्ष कीजिए। वस्तु से, व्यक्ति से, संबंध से, क्रिया से, अब उसकी चर्चा हम आपको विस्तार से, ऐसा कोई कर्म बताओ हाँ जो आपको हमेशा पसंद हो, जिससे आपको ऊब न लगती हो। हाँ माने ये असंगता, सहज असंगता आपके जीवन में आपको देखने के लिए मिल रही है। आप असंग हैं, लेकिन अपनी उस असंगता को आपने समझने की चेष्टा नहीं की। और भगवान कहते हैं कि जो विद्वान है, समझदार है, बस उसका कार्य इतना ही है कि वो असंग होकर के विचरण करे। आद्यंतवत असज्ञात्वा निसंगो विचरे, यह माने वर्तमान क्रिया का प्रयोग करते हैं, यह माने यहां अस्मिन लोके, इस संसार में असंग होकर के विचरण करे। असंगता में, असंगता होने में दूसरी बाधा क्या होती है? दूसरी वादा यह होती है क्या कि हम संबंध से बंध करके इस रूप में रहते हैं क्या मेरा 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 मैं का ध्यान नहीं रहता है। हमारे समग्र व्यवहार में आप देखिए हम केंद्रित कहां हैं, मैं से केंद्रित हैं या मेरे से, और इसीलिए मैं से केंद्रित रहने मेरे से केंद्रित रहने के कारण मैं पर दृष्टि ही नहीं जा पाती है, सारा जीवन निकल जाता है। हमारी दृष्टि मेरे पर केंद्रित रहती है, मैं पर केंद्रित नहीं रहती है, और जिस दिन मैं पर दृष्टि जाएगी हाँ उस दिन असंग हुए बिना आप रहेंगे नहीं, क्योंकि आपको असंगता के लिए कुछ करना नहीं है। ये नहीं कि जब अहम पर दृष्टि जाएगी तो उस समय असंग बनने के लिए आपको कुछ करना पड़ेगा, अरे आप असंग हैं हाँ, लेकिन उस पर दृष्टि नहीं जाती है। समग्र जीवन जिसे आप इदम करके देखते हो उस इदम को ही आप अहम करके देखने लग जाते हो, और उस समय सारी दृष्टि वह इदम पर केंद्रित होती है या मम पर, जिसको हम मेरा बोलते हैं, वहां केंद्रित होती है दृष्टि, अहम पर केंद्रित नहीं होती है, और इसलिए असंग होने में परेशानी आ जाती है। नहीं तो आत्मा तो असंग है, नित्य असंग है, इसलिए इस असंगता को अपने जीवन में लाने के लिए भगवान कहते हैं विद्वान की पहचान यही है कि वो असंग होकर के विचरण करें। अब यहां तक ये कथा पूरी होने के बाद उद्धव जी ने जो प्रश्न किया है हाँ उसकी चर्चा अब कल से प्रारंभ होगी। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की।